सीता ने लखन को कहा, अच्छा तो अब मुझे सारी बात और तुम्हारा सारा प्लान समझ में आ रहा है। मैं इतने दिन से यही सोच रही हूं कि तुम अपनी पत्नी को छोड़कर, अपने राज्य को छोड़कर, सब कुछ छोड़कर हमारे साथ क्यों घूम रहे हो। बस आज मुझे पता चला तुम इसी दिन की राह देख रहे थे ना, कि राम को कुछ हो जाए और फिर तुम मेरे से विवाह करो। लक्ष्मण जी के हृदय में बहुत बिजली चमक गई जब सीता के मुख से ये बात सुनी। अपनी मां से विशेष समझ रहे थे लक्ष्मण जी देवी सीता को, लेकिन एक स्त्री, यहां पर सीता ने यह सिद्धांत स्थापित किया। वास्तव में सीता में ऐसा दोष कभी आ नहीं सकता है, लेकिन जगत के लोगों को उपदेश देने के लिए, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम की पत्नी है ना, भगवान राम जैसे धर्म की स्थापना की है वैसे सीता ने भी धर्म की स्थापना की। रामायण के गूढ़ विषय में एक विषय है, बहुत गूढ़ विषय है। सीता ने कहा कि अच्छा तुम मेरा भोग करना चाहते हो, मेरे पति मर जाए और फिर मेरा भोग करोगे, इसलिए तुम यहां पर रहे हो। लखन जी से अब बर्दाश्त नहीं हुआ, बस माते बस, अब आगे एक शब्द मत बोलिए। तुरंत लखन वहां से निकले, परंतु जाते जाते लखन को पता था, लखन जान गए इसमें किसी असुर की कुछ साजिश है, लेकिन मां के मुख से ये बात लखन सुन नहीं पाए। लखन जी के विषय में आगे आया है भक्तों, कितने पवित्र पुरुष थे। जब सीता का हरण हो जाएगा और अनसुया ने दिए हुए जो गहने थे सीता ने एक कपड़े में बांध कर फेंके, भगवान राम को वो मिले, भगवान राम खोलकर देख रहे थे, अरे ये सीता के ही है। भगवान राम ने लखन को दिखाया, लखन ये देखो सीता का हार, लखन देखो ये सीता की ही चूड़ी है, लखन देखो ये सीता का हार, सीता की चूड़ी, सीता के जो भी कान में पहनने का आभूषण। तब लखन दोनों हाथ जोड़कर कहते हैं, प्रभु मुझे क्षमा कीजिए, प्रभु क्षमा कीजिए, मैं इन आभूषणों में से एक भी आभूषण को पहचान नहीं पा रहा हूं। क्यों जानते हो? क्योंकि आज तक मैंने मेरी भाभी के चरणों से ऊपर दृष्टि नहीं की है, मैं केवल घुंघरू को पहचान रहा हूं, बाकी और कोई आभूषण को मैं नहीं पहचान रहा हूं। इतने पवित्र पुरुष थे, प्रभु में ये चरणों का जो नुपुर है ये मैं पहचान रहा हूं, क्योंकि मेरी दृष्टि मात्र उनके चरणों में रहती थी, कभी चरणों से ऊपर नहीं गई। ऐसे लखन को सीता ने इतने कड़े वचन कहे, सुन नहीं पाए। जाते जाते एक रेखा खींची, लक्ष्मण रेखा। लक्ष्मण जी ने कहा कि यदि कोई भी व्यक्ति आए, माते इस रेखा से बाहर मत निकलना, ये असुरों से आपकी रक्षा करने के लिए है। असल में लक्ष्मण रेखा थी असुरों की रक्षा करने के लिए, आज लोग कॉकरोच से रक्षा करने के लिए खींचते हैं, है? और कंपनी वाले ने भी नाम दिया है लक्ष्मण रेखा, है? बेचारे जीव जंतु को मारने के लिए, है? ये असुरों से रक्षा करने के लिए है। वास्तव में हमारे घर में जो कीट पतंग इत्यादि हैं, वो हमारे फैमिली के सदस्य माने जाते हैं, उसे मारना मतलब बहुत बड़ा पाप है। लक्ष्मण जी चले और यहां पर रावण प्लान के अनुसार एक ब्राह्मण का रूप लेकर आया, सीता को कहा कि भिक्षान दे ही। प्रसंग आप सब जानते हैं, सीता आई देने के लिए, कहा नहीं बाहर आकर दो। सीता जैसे ही भिक्षा देने गई, रावण सीता का हरण करके चला गया, बहुत दुखी हुई। और यहां पर भगवान राम उस हिरण को हाथ में पकड़कर आ रहे थे और देखा सामने की ओर से लक्ष्मण जी आ रहे हैं दौड़ते हुए। कहां जा रहे हो? लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु मैं आपको ढूंढते आ रहा हूं, लेकिन तुम घर से निकले क्यों? भगवान राम ने लक्ष्मण को डांटा, कहा कि मैंने कहा था कि तुम घर पर ही रहना, घर से निकलना मत, लगता है कुछ अनिष्ट हो गया होगा, तुम घर से क्यों निकले? भगवान राम डांटने लगे लक्ष्मण को। तब लखन ने कहा कि सीता माता ने बहुत कठोर वचन कहा मुझे, तब एक सिद्धांत दिया भगवान राम ने, अरे तुम स्त्री की बात को हृदय में ले रहे हो, अरे इस जगत में स्त्री कुछ भी बोल सकती है, स्त्री की बात जिसने अपने हृदय में ले ली वह व्यक्ति जीवन में कभी सुखी नहीं हो सकता है। दो कान क्यों मिले हैं, कान दो क्यों मिले हैं, यहां हाईवे, क्योंकि स्त्री कभी भी कुछ भी बोल सकती है। भगवान राम ने यह आदर्श दिया, कभी भी उसकी बात को हृदय में नहीं लेना चाहिए। आज स्त्री की बात को हृदय में लेने वाले बहुत दुखी रहते हैं, इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। इसका अर्थ यह भी नहीं है कि स्त्री को निग्लेक्ट करना, किस बात को हृदय में नहीं लेना चाहिए, जो बात वो बहक कर बोल जाती है, जो मर्यादा के पार होकर बोलती है, इसकी बात हो रही है। बहुत डांटे, तुम नीति नहीं जानते हो, तुम ये नहीं जानते हो, मैंने तुम्हें कहा था। और दोनों भाई इस प्रकार से बात करते करते घर पर पहुंचे, पता चला सीता नहीं है, सीता का कोई हरण करके चला गया। राम ने बहुत ढूंढा। अब आइए पतियों के लिए उपदेश आ रहा है, आज का कोई होता तो अच्छा हुआ, अपहरण करके चला गया कोई। लेकिन भगवान राम ने बहुत ढूंढा। लक्ष्मण को पूछते थे, लक्ष्मण कहां होगी, कहां होगी, एक पागलों की भांति।
लक्ष्मण समूह जाए बहु भांति, पूछत चले लता तरुपाती।
भगवान रामचंद्र जो जो रास्ते में मिल रहे हैं सबको पूछ रहे हैं, आपने मेरी पत्नी सीता को देखा, आपने मेरी पत्नी सीता को देखा। कपड़े का कोई ज्ञान नहीं है, बाल बिखर गए हैं, और एक पागलों की तरह भगवान सबको पूछ रहे हैं, यहां तक पशु पक्षी को पूछ रहे हैं, पत्थर पत्थर को पूछ रहे हैं, वृक्ष को पूछ रहे हैं, आपने मेरी सीता को देखा। अद्भुत प्रेम, भगवान राम का सीता के प्रति जो प्रेम था। आज का कितना भी किसी भी व्यक्ति को प्रेम करने वाला व्यक्ति यदि खो जाए तो वृक्ष को नहीं पूछेगा, लता पता को, पक्षी को नहीं पूछेगा, परंतु भगवान पूछते हैं।
हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग ने।
हे खग, हे मृग, क्या तुमने मेरी सीता को देखा, मेरी पत्नी सीता की जो आंख थी मृग के समान थी, हिरणी के समान थी, उनमें बहुत सारे गुण था, बहुत गुणवान थी, बहुत सेवा करती थी, बहुत सुंदर स्वभाव था। भगवान राम अपनी पत्नी के स्वभाव को याद कर रहे हैं।
हा गुण खानी जान किसीता, रूप शील व्रत नेम पुनीता।
जो गुणों की खान थी और जिनका सिल, जिनका आदर्श अद्वितीय था, क्या आपने मेरी पत्नी सीता को देखा। प्रत्येक एक एक जीव को, भंवरे को पूछ रहे हैं, चींटी को पूछ रहे हैं, गिलहरी को पूछ रहे हैं, एक एक जीव को।
खंजन सूक कपोत मृग मीना, मधुपनिकर कोकिल प्रवीना।
तोते को पूछ रहे हैं, कपोत कबूतर को पूछ रहे हैं, मृग को पूछते हैं, लता पता वृक्ष सब को पूछते जा रहे हैं। मेरी पत्नी को देखा, पत्नी को देखा, अपनी पत्नी को ढूंढ रहे हैं, और जब तक पत्नी को प्राप्त नहीं कर लिए तब तक ढूंढते रहे। ऐसा नहीं पांच दिन ढूंढने के बाद फिर छोड़ दिए, और अपनी पत्नी को प्राप्त करने के लिए बंदरों से के साथ मित्रता करनी पड़ी, कर ली। समुद्र के ऊपर सेतु बांधना पड़ा, बांध लिया। लाखों असुरों को मारना पड़ा, मार दिया, परंतु अपनी पत्नी को प्राप्त करके रहे। इसे कहते हैं पति का धर्म है? कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, परंतु पत्नी को छोड़ेंगे नहीं। ये पति का सबसे बड़ा धर्म है। इसमें सब कुछ आ गया भक्तों। कुछ भी हो जाए, कैसा भी स्वभाव हो, कुछ भी हो, उसे सुधारेंगे, उसे संवारेंगे, उनमें गुण भरेंगे, सब कुछ करेंगे। लाखों असुरों को मारना पड़ेंगे, मारेंगे, समुद्र पर सेतु बनाना पड़े बना देंगे, परंतु कभी एक बार पानी ग्रहण कर लिया तो फिर कर लिया। इसे कहते हैं आदर्श, इसे कहते हैं पति का धर्म। ये तो तुरंत बेचारी पत्नी अपने घर बार अपने पूरे परिवार को छोड़कर आती है, अब भूल किससे नहीं होती है? बड़े बड़े देवता, अरे देवताओं के राजा इंद्र से जब भूल हो जाती है, एक अबला नारी से भूल नहीं हो सकती है? एक बार भूल हो गई तो कहते थे चली जाओ अपने घर पर। मूर्ख कही के यदि भेज ही देना था तो लेकर क्यों आया? वास्तव में पति का अर्थ होता है पालन करने वाला। जो पालन करे उसे पति कहते हैं। पालन कर, भगवान राम ने पालन करके दिखाया अपनी पत्नी का, पालन किए। तो इस प्रकार रामायण सबके लिए है, सबको सिखाती है। भगवान राम आगे गए, चलते चलते अपनी पत्नी को ढूंढते 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 भगवान को रास्ते में जटायु जी मिले। ये प्रसंग भी आप सब जानते हैं। जटायु को पता था रावण सीता को लेकर गया, रावण के साथ युद्ध हुआ बहुत। सीता को बचाने के लिए रावण के साथ युद्ध किया, मृत्यु अंतिम घड़ी गिन रहा था। भगवान गए और भगवान को बताया कि उनको रावण लेकर गया है, और जटायु की मृत्यु भी अद्भुत हुई। भगवान को देखते हुए, भगवान को स्तुति करते हुए जटायु ने अपने प्राण को त्यागा। अपनी पत्नी सीता का अन्वेषण करते 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 भगवान किष्किंधा नामक क्षेत्र में आए हैं। गोस्वामी जी यहां पर अपना अध्याय बदलते हैं, किष्किंधा कांड प्रारंभ करते हैं। किष्किंधा वह जगह थी जहां पर सुग्रीव जी हनुमान जी के साथ रहते थे। बाली के साथ सुग्रीव का झगड़ा था और बाली से डरकर सुग्रीव जी किष्किंधा में छिप कर बैठे थे। राम और लखन जब किष्किंधा क्षेत्र में आए, सुग्रीव ने हनुमान को भेजा, जाओ जरा देख कर आओ कौन आया है। हनुमान जी ब्राह्मण का रूप लेकर भगवान की परीक्षा करने के लिए आए। हनुमान जी ने पूछा आप कौन हो? तब भगवान रामचंद्र ने कहा अयोध्या के राजा दशरथ के सूर्य वंश के रघुकुल के शिरोमणि अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र मैं राम और ये लक्ष्मण हैं। जब इतना सुना, हनुमान जी विप्र वेश में ब्राह्मण के वेश में थे, इतना सुना कि ये तो मेरे प्रभु हैं, ये तो मेरे स्वामी हैं, ये तो मेरे ईश्वर हैं, और जो ईश्वर जो भगवान पूरे संसार की परीक्षा लेता है, आज मैं भगवान की परीक्षा लेने गया। हनुमान जी को हृदय में बहुत दुख हुआ, चरणों में गिर गए, प्रभु प्रभु मुझे आप क्षमा कीजिएगा, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मेरे से बहुत बड़ा अपराध हो गया। तब भगवान राम ने हनुमान जी को अपने गले लगा लिया। आपका स्थान हनुमान जी महाराज चरणों में नहीं, आपका स्थान हृदय में है, आज से आप मेरे मित्र हो। भगवान के मुख से निकल गया मित्र और हनुमान जी के मुख से निकल गया। इस प्रकार हनुमान और राम दोनों, हनुमान जी महाराज अपने कंधे पर बिठाकर राम और लक्ष्मण को अपने राजा सुग्रीव जी के पास लेकर गए। मित्रता हुई, भगवान राम ने सुग्रीव जी के जीवन में जो तकलीफ थी दूर की, बाली का वध किया। और हनुमान जी महाराज ने सुग्रीव जी को कहा कि प्रभु की पत्नी कहीं खो गई है तो हमें उसे मदद करनी चाहिए। इसके लिए सुग्रीव जी ने अपनी बहुत विशाल सेना थी, अपनी विशाल सेना के चार भाग किए और भारत के चारों दिशा में, उत्तर भारत, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, सुग्रीव जी ने अपनी सेना के चार भाग करके चारों भाग में पूरे भारत में अपने अनुचरों को भेज दिया। परंतु साउथ में जो सेना गई थी बहुत मजबूत थी। उस सेना में अंगद जी थे, जामवंत जी थे, हनुमान जी महाराज थे, एक से एक लोग थे। और वो साउथ में गए, ढूंढते 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 संपाति रास्ते में मिले और संपाति जी ने सारी बात बता दी। संपाति ने कहा कि मैं आकाश में बहुत ऊपर तक उड़ सकता हूं और मैंने ऊपर उड़कर देखा है कि आप जिसको ढूंढ रहे हो वह सीता वर्तमान में लंका में है, मुझे पता है, पता चल गया। और ये जो दक्षिण में सेना गई थी मीटिंग की कि फिर भी ये बात कंफर्म कर लेनी चाहिए, लंका में सीता है या नहीं, और यदि लंका में सीता को कोई लेकर गया है तो जीवित है कि नहीं है, किस स्थिति में है। तो सबसे पहले हम लंका में जाकर कंफर्म करके आएंगे कि सीता है या नहीं और सारी बात बताएंगे। दक्षिण भारत में समुद्र तट पर सब लोग, सारी सेना आई और अब प्रश्न ये उठा कि समुद्र को पार करके लंका में जाए कौन। सबकी दृष्टि अंगद जी के ओर गई, अंगद जी आप जाइए, आप बाली के पुत्र हैं और परम पराक्रमी हैं। अंगद जी के बारे में रामायण में आगे बहुत सुंदर कथा है। अंगद जी इतने शक्तिशाली थे, रामायण में आगे कथा है कि रावण के दरबार में जाकर हजारों असुरों के बीच में अंगद जी ने अपना पांव चाप दिया। और कितना बड़ा रिस्क सोचने में भी नहीं आता है, अंगद ने कह दिया कि आप लोगों में से एक व्यक्ति ने भी इस पांव को हिला दिया, सीता को छोड़कर चला जाऊंगा, हम लोग एक बार भी सीता को देखने तक नहीं आएंगे। कितनी शक्ति होगी। आचार्यों ने लिखा है, कहा है कि अंगद जी ने इतनी बड़ी बात कह दी, भगवान की पत्नी को दाव पर लगा दिया। रावण को कहा, कह रहे तुम राम के साथ युद्ध करोगे, किसे मारोगे, पहले मेरे पांव को तो हिलाकर दिखाओ, और यदि एक ने भी हिला दिया राम और मैं सीता को छोड़कर चले जाएंगे। कितना बड़ा रिस्क है ये। कभी कभी मन में प्रश्न उठता है, अंगद जी ने ऐसा कह दिया। भक्तों, अंगद जी ऐसा इसलिए बोल पाए क्योंकि उनको राम पर पूरा भरोसा था, राम का दास हूं है? कोई डिगा नहीं सकता है, कोई नहीं हिला पाया। अंत में रावण उठा, जब कोई रावण ने कहा कि यदि पांव हिलाने से काम बन जाता है तो युद्ध क्यों करें, रावण खड़ा हुआ कि चलो हिला देता हूं, ये लोग छोड़कर भाग जाएंगे। रावण खड़ा होकर आया, अंगद जी के चरणों में गिरा। अंगद ने कहा, मूर्ख, यदि चरणों को पकड़ना ही है तो चरण देने वाले शरणागत वत्सल भगवान राम की शरण पकड़, मेरी शरण क्यों ग्रहण कर रहा है, तुझे छोड़ देंगे। ये अंगद को कहा गया कि समुद्र को पार करो। तब अंगद जी ने समुद्र को देखा, बोले जा तो सकता हूं, जाने में कोई डाउट नहीं है, लेकिन वापस आने में संदेह लग रहा है, जा सकता हूं लेकिन वापस नहीं आया शहीद हो जाऊंगा खामखा बिना कोई वजह का। तब सब लोग ने कहा कि जामवन जी आप जाइए, क्योंकि आप तो बहुत वरिष्ठ हैं, आप सबके सबसे बड़े हैं। जामवन जी ने कहा कि देखो, मैं शक्तिशाली था, जब भगवान ने वामन अवतार धारण किया, अपने दो कदम में पूरे ब्रह्मांड को नापा, उस समय मैंने कुछ ही घड़ी में भगवान की परिक्रमा 7 बार कर ली थी, इतना वेग वाला था मैं। परंतु अब मैं बूढ़ा हो गया हूं, ये कार्य मैं नहीं कर सकता हूं। बहुत बड़ा उस समुद्र के तट पर बहुत बड़ा प्रश्न उठा, भगवान राम का कार्य, भगवान राम की सेवा, सीता को देखने लंका में जाए कौन। सन्नाटा छा गया, अब कौन जाए कौन जाए कौन जाए। सभा में हनुमान जी महाराज भी बैठे थे, परंतु हनुमान जी को ऋषि के द्वारा श्राप था कि जब तक उनको उनकी शक्ति याद नहीं कराई जाएगी तब तक वो शक्ति प्रकट नहीं होगी। और जामवन जी अपनी पूरी सेना की ओर देख रहे हैं और देखते देखते हनुमान जी महाराज जामवन जी की आंखों में आए और जामवन जी ने इतना ही कहा कि हनुमान जी महाराज क्या सोच रहे हो, आपका जन्म ही राम के कार्य के लिए हुआ है, आप पवन के पुत्र हो, आपकी गति पवन के समान है, आप चाहो तो एक झटके में पार कर सकते हो। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि ज्ञान विवेक निराना। हे मारुति हनुमान जी महाराज, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि ज्ञान विवेक निराना। पवन के पुत्र हो, परम बुद्धिमान हो, समस्त बुद्धि भगवान की कृपा से आपने धारण की है, आप समर्थ हो। हनुमान जी महाराज, इस संसार में ऐसा कौन सा कार्य है जो आप नहीं कर सकते हो। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो ही तात तुम पाही।
कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो ही तात तुम पाही।
संसार में ऐसा कौन सा कार्य है जिसे आप नहीं कर सकते हो, सारे कार्य करने में समर्थ हो। और हनुमान जी महाराज याद करो, आपका जन्म राम के कार्य के लिए हुआ है। इतना बोलते ही हनुमान जी महाराज पहाड़ के समान विशाल हो गए।
राम काज लगी तव अवतारा, सुनत ही भयहु पर्वताकारा। राम काज लगी तव अवतारा, सुनत ही वायु पर्वता तारा।
राम काज लगी तव अवतारा, सुनत ही वायु पर्वता।
राम के कार्य के लिए मेरा जन्म हुआ है, यह सुनकर हनुमान जी महाराज का पराक्रम प्रकट हुआ। पहाड़ के समान विशाल हो गए और सिंह की तरह गर्जना करने लगे।
सिंह नाद करी बार ही मारा, लील ही नाग जल निधि धारा।
सिंह नाद करी बार ही मारा,
सिंह की तरह गर्जना करने लगे। उसी समय हनुमान जी महाराज, जामवन जी उनके पराक्रम को याद करा रहे। हनुमान जी कहते बस जामवन जी बस, मुझे याद आ गया। हनुमान जी महाराज उसी समय समुद्र के बाजू में एक बहुत बड़ा पर्वत था, उस पर्वत के ऊपर चले गए। गोस्वामी जी लिखते हैं, हनुमान जी ने अपनी एक दृष्टि में पूरे समुद्र को नाप लिया, देख लिया। और हनुमान जी महाराज उस समुद्र के ऊपर छलांग मारने के लिए अपने घुटने टेक दिए। सारा वजन हनुमान जी महाराज के चरणों में आया, उस चरणों के बल से वह पर्वत समुद्र में चला गया। हनुमान जी महाराज उस पर्वत से जब अपनी छलांग लगाई और हनुमान जी महाराज आकाश में उड़े हैं, गोस्वामी जी कहते हैं जैसे राम के धनुष से अमोघ बाण निकलता है वैसे हनुमान जी महाराज निकले।
जिमी अमोघ करी रघुपति बाना, ए ही बात चले हूँ अनुमाना। जिमी अमोघ रघुपति कर बाना, ए ही बात चले हूँ हनुमाना।
राम के बाण के समान हनुमान जी महाराज की गति है और कुछ ही समय में हनुमान जी महाराज विशाल समुद्र को पार कर दिए। हनुमान जी महाराज की क्यों नहीं करते। पवन पुत्र, अंजनी पुत्र, शंकर सुवन केसरी नंदन है, शिवजी रुद्र के 11वें अंश के रूप में हनुमान जी प्रकट हुए हैं। अद्भुत पराक्रम है। और भगवान रामचंद्र के परम भक्त हैं, एक ही झटके में हनुमान जी महाराज ने समुद्र को लांघ दिया, पार कर दिया, अनेक विघ्न आए, परंतु राम की कृपा से हनुमान जी महाराज सारे विघ्न को पार कर दिए। हनुमान जी महाराज आए लंका में, लंका में लंका का जो नगर था उन्हें बहुत बड़ी बाउंड्री थी, दीवारें थी, और लंका में प्रवेश करते ही प्रवेश द्वार पर एक बहुत बड़ी राक्षसी थी। हनुमान जी महाराज ने देखा कि अब ये पहाड़ समान स्वरूप यहां पर रखना ठीक नहीं है।
मस्क समान रूप कपि धरी लंक ही चले वो सुमेरी नर हरी। मस्क समान रूप रूप कपि धरी लंक ही चले वो सुमेरी नर हरी।
अद्भुत हनुमान जी महाराज ने मशक समान मच्छर जैसा रूप बना लिया, और अब दुश्मन की नगरी में जा रहे हैं जहां सब असुर है। हनुमान जी को हृदय में थोड़ा संशय हुआ क्या होगा, परंतु उस समय हनुमान जी महाराज ने अपने इष्ट देव भगवान को याद किया, सुमिरी माने स्मरण किया, किसका? नरहरि का। नरहरि, हम लोग नरहरि माने नरसिंह भगवान समझते हैं, नरसिंह शब्द सुनते हैं या नरहरि सुनते हैं तब हमको यही स्मरण होता है हिरण्यकश्यपु को फाड़ने वाले, परंतु हर समय नरहरि और नरसिंह का अर्थ हिरण्यकश्यपु को फाड़ने वाले ही नहीं होता है। नरहरि यहां पर बहुत सुंदर शब्द है, नरहरि। नरहरि का अर्थ होता है नर रूप में लीला करने वाले साक्षात हरि, इति नर हरि। जो हरि आज नर रूप में आए हैं उसे नर हरि कहते हैं। और नरसिंह का अर्थ मात्र हिरण्यकश्यपु को फाड़ने वाले नहीं, कृष्ण का भी एक नाम नरसिंह है। नरसिंह का अर्थ होता है जो नरों में सिंह है, जो नरों में सिंह के समान प्रभावशाली, नरसिंह कहते हैं। अपने इष्ट नरसिंह भगवान राम का स्मरण किया। नाम लंकिनी एक निशिचरी सो कह चले सी मोह निंदरी। लंका के द्वार पर एक लंकिनी नाम की राक्षसी थी, और जैसे ही हनुमान जी महाराज मच्छर का रूप लेकर गए, मच्छर जैसा छोटा रूप, लंकिनी की दृष्टि इतनी तेज थी पकड़ लिया। ये टोल टैक्स वाले कैसे भी करके पकड़ ही लेते हैं, कितना भी गाड़ी भगाओ है? लंकिनी ने पकड़ लिया। बोले कहां जा रहे हो? बोले अंदर जा रहे हैं। बोले हे सठ, तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूं। मोर आहार जहां लगी चोरा, तेरे जैसे लोग तो मेरे आहार बनकर बैठ जाते हैं, तेरे जैसे लोगों को तो मैं खा जाती हूं दिन में 10 बार। ये लंकिनी हनुमान जी महाराज को कह रही है। हनुमान जी महाराज मां के स्वभाव में देख रहे हैं, मैया शांत रहो, यदि ठीक से काम बन जाता है तो ठीक है, नहीं तो जीवन में पहली बार स्त्री के ऊपर हाथ उठाना पड़ेगा। तखन हनुमान जी महाराज ने कहा कि माता जी जाने दो अंदर। बोले नहीं, मैं नहीं जाने दूंगी। बोले मैं प्रभु की सेवा के लिए निकला हूं और प्रभु का कार्य करके ही जाऊंगा। बोले तेरा प्रभु कौन है मैं नहीं जानती हूं, मैं तुझे नहीं जाने दूंगी। हनुमान जी ने बहुत बहुत समझाया, लंकिनी मानी नहीं।
मूठी का एक महाकपिहनी रुधिर बमन धर
नीठन माने। हनुमान जी महाराज को क्रोध आया, वैसे क्रोध ज्यादा आता नहीं था इनको, परंतु अपने प्रभु की सेवा करने निकले हैं और प्रभु की सेवा में बाधा बन रही है, स्त्री होता स्त्री है तो क्या हो गया। हनुमान जी महाराज ने अपनी मुट्ठी बंद की और एक जोर से लंकिनी के पेट में मारा, रुधिर बमन खून की उल्टी कर दी, खून निकल गया मुख से, बेहोश होकर गिर गई। और मरते मरते लंकिनी ने जो कहा है, क्योंकि भक्त के हाथ से पड़ा था ना, भक्त हो गई है, मरते मरते उन्होंने जो बात कही है अद्भुत, पूनी संभारी उठी सो लंका, जोरी पानी कर विनय ससंका। हनुमान जी महाराज अब लंका जाने वाली है, अब लंका रावण के हाथ में रहने वाली नहीं है, अब रावण का वध दूर नहीं है। क्यों? क्योंकि जब ब्रह्मा जी रावण को वरदान देने के लिए आए थे, जब ब्रह्मा जी रावण को ब्रह्म वरदान दे रहे थे, तब मैं बाजू में खड़ी थी। ब्रह्मा जी रावण को वरदान दे दिए और जाते जाते मुझे कहते गए कि जब हे लंकिनी यहां पर कोई बंदर आएगा और बंदर तुम पर भारी पड़ जाएगा, तब रावण की उल्टी गिनती शुरू कर देना। समझ गई बस। विकल हो सीते कपि के मारे, तब जाने सु निशिचर संहारे। जब एक वानर तुम्हें मार देगा, तब समझ लेना यहां के असुरों का विनाश है। लेकिन अब लंकिनी बड़े आदर से हनुमान जी महाराज को तात कह रही है, हे प्रभु, तात मोर अति पुण्य बहुता, देखे उनयन राम कर दूता। वाह, मरते मरते लंकिनी ने कहा, हे तात, जीवन भर तो असुरों की सेवा की, जीवन भर असुरानी की, जीवन भर लाखों लाखों लोगों को मारा काटा पाप किया, लेकिन आज न जाने मैंने कौन सा बड़ा पुण्य किया है, मरते मरते राम के दूत का, राम के भक्त का दर्शन हो गया। देखे उनयन राम कर दूता, न जाने मैंने कौन सा बड़ा पुण्य किया होगा जिसके फल स्वरूप आज मैं भक्त का, एक संत का दर्शन कर रहे हूं, याद कर रही है। वास्तव में बिना पुण्य के संतों का दर्शन होता नहीं है, ये सत्य बात है। ये सब रावण को मार देंगे, राम राजा बन जाएंगे, फिर राम एक दिन अपनी प्रजा को प्रवचन उपदेश देते हुए भगवान राम स्वयं कहते हैं, पुण्य पुंज बिनु मिलहिन संता। हे अवधवासियों, कान खोलकर सुन लो, इस जगत में भक्ति प्राप्त होती है संतों के संग से, परंतु संत मिलना कोई आसान बात नहीं है। पुण्य के पुंज के बिना संतों का दर्शन नहीं होता है। पुण्य पुंज बिनु मिलहिन संता, सतसंगति संस्कृति कर अंता। और जब सत्संग प्राप्त हो जाए, तब समझ लेना ये जो संसार है इसका अंत हो जाएगा और मेरा धाम प्राप्त हो जाएगा। ये है संतों का मिलन, ये है भक्तों का मिलन, ये है भक्तों का दर्शन। आज एक राक्षसी कह रही है, मैंने कौन सा बड़ा पुण्य किया होगा कि आज मैं एक भक्त का दर्शन कर रही हूँ। वास्तव में भक्तों का दर्शन करना बहुत बड़ा पुण्य है। नरोत्तम दास ठाकुर ने यहां तक कह दिया, आपको पवित्र होना है, गंगा में जाते हो, यहां से हरिद्वार जाना, हरिद्वार में जाकर गंगा में स्नान करना, और उसमें भी श्रद्धा है तो पवित्र हो गए, नहीं तो पवित्रता नहीं आएगी। गंगार परश हैल पश्चात पावन, गंगा में तो स्नान करने के बाद व्यक्ति पवित्र होता है, परंतु संतों को मात्र देख ले, देखने मात्र से पवित्र हो जाता है। दर्शन पवित्र करो यही तो मार्ग गुण, दर्शन मात्र से ये संत पवित्र कर देते हैं, पवित्र कर देते हैं। मैं क्षमा चाहूंगा, काकभूषण जी का प्रवचन आज नहीं हो पाएगा, परंतु उन्होंने एक चीज बहुत सुंदर कही संतों के लिए है। संत किसे कहते हैं? गरुड़ जी ने काकभूषण जी को पूछा, सात प्रश्न पूछे, उनमें से एक प्रश्न था कि संत कौन है, संत किसे कहते हैं। उस उत्तर के क्रम में काकभूषण जी ने कहा था, वाणी मचन कर्म, वाणी से, मन से, कर्म से, जो अपनी वाणी से, जो अपने मन से और जो अपने शरीर से केवल परोपकार ही परोपकार, दूसरों के लिए ही कार्य करते हैं, उसे संत कहा जाता है। वाणी वचन,
वाणी वचन मन अरुकाया, संत स्वभाव सहज खगराया।
दूसरों के लिए और दूसरों के दुख को देखकर संत का हृदय पिघल जाता है।
संत हृदय नवनीत समाना,
संतों का हृदय नवनीत ताजे माखन के जैसा कोमल होता है। परंतु काकभूषण जी कहते हैं कि वो माखन जो है वो जब खुद गर्म होता है तब पिघलता है, परंतु संतों का हृदय तो दूसरे दुखी व्यक्ति को देखकर पिघल जाता है, उसे संत कहते हैं। वो है संत जो दूसरों के दुख को देखकर यहां दुख पिघल जाए। संत की व्याख्या कोई बड़ी लंबी चौड़ी नहीं है, जो जिसका जीवन दूसरों के लिए हो वो संत है, बस साधु है। अरे अपने लिए तो सब लोग जीते हैं, अपने शरीर के लिए, अपनों के लिए सब लोग जीते हैं, जब दूसरों के लिए आप जियोगे तब शास्त्र पुराण और भगवान उसे संत की उपमा देंगे। संत उसे कहते हैं दूसरों के लिए, हनुमान जी महाराज। और ऐसे संतों का जब दर्शन करते हैं हृदय में पवित्रता आ जाती है। हनुमान जी का दर्शन किया और कहती है कि मैं पवित्र हो गई, और मरते मरते क्या कहती है, अद्भुत प्रवचन।
तात
बहुत सुंदर ये दोहा कह रही है,
तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुला एक अंग, तोलनता ही सकल मिली जो सुख लव सतसंग।
ये राक्षसी ने कहा, आज के मनुष्य भी ऐसा नहीं बोल सकते। राक्षसी मरते मरते ये बोलकर गई, हे तात, हे प्रभु, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, बोले स्वर्ग का सुख और मुक्ति का सुख ये सारा सुख एक पलड़े में लख दो, और एक पलड़े में मात्र संतों की संगति का एक क्षण रख दो, और वजन कांटा उठाओ उस स्वर्ग और मुक्ति का सुख से ज्यादा सुख संतों की एक घड़ी का सुख हो जाएगा है? जो सुख लव सत्संग, संतों के संग में जो लव मात्र का सुख है, अद्भुत सुख है संतों की संगति। एक बार कबीरदास जी को लेने के लिए भगवान ने अपना विमान भेजा, कबीरदास जी रोने लगे, रोने लगे,
राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोये।
राम ने बुलावा भेजा, पार्षदों को भेजा, विमान को भेजा, और पार्षद और विमान को देखकर कबीरदास जी रोने लगे। तब भगवान ने फोन किया, अरे मैं तो अपने धाम में बुलाने के लिए भेज रहा हूं, तुम इतने रो क्यों रहे हो है? तब कबीरदास जी कहते हैं कि आपने मुझे अपने धाम में ले जाने के लिए बुलाया है, विमान भेजा है, रोना इसलिए आ रहा है कि जो सुख यहाँ पर आपके सत्संग में है वो सुख आपके धाम में भी नहीं है।
जो सुख सत्संग में वो वैकुंठ में न होई,
राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोई, जो सुख सत्संग में वो वैकुंठ में न होई। कितना सुंदर भाव है, भक्तों के संग में जो सुख है, जो आनंद है, बस हमें तो यही लगता है कि बस इसी प्रकार कथा सुनते हुए जीवन चला जाए, अद्भुत आनंद है। इस प्रकार यदि हम लोग निरंतर कथा सुनते रहे ना, इस दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि हमको दुखी कर सके। ये भक्ति का, ये सत्संग का प्रभाव है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, भागवत के प्रथम स्कंद में महाराज परीक्षित 7 दिन में मरने वाले थे। अब आपको कहा जाए कैंसर हो गया है, 2 महीने में मर जाओगे, कितना दुखी हो जाएगा व्यक्ति। और कहा जाए 7 दिन में मर जाओगे, 7 दिन में मरना था, परंतु हरिद्वार में गए, अनेक ऋषि मुनि साधु संत महात्मा ओके ढेर के ढेर लग गए, और सबके बीच में महाराज परीक्षित ने ऐलान किया कि अब मुझे भय नहीं है। साक्षात तक्षक नाग आ जाए या साक्षात काल भी आ जाए, फिर भी मुझे डर नहीं है। क्यों? गंगा की पवित्र धारा में खड़ा हूं और संतों के बीच में बैठा हूं, किसी भी बात का भय नहीं है। भले मैं मर जाऊं, संतों का दर्शन करते हुए मरूंगा, निश्चिंत हो गए। ये है संतों की महिमा। ध्रुव महाराज ने कह दिया, प्रभु कुछ नहीं चाहिए।
अब कछु नाथन चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तो, फिरती बार मोही जो कछु देवा, सो प्रसाद में शीर धरी लेवा।
कुछ नहीं चाहिए, बोले कुछ तो मांगो, संसार में दुख है, जगत दुखालय है, सुखी होने का कुछ तो रास्ता। बोले कुछ नहीं प्रभु, आप आशीर्वाद दे दीजिए कि भक्तों के संतों के बीच में बैठूं और आपकी कथा सुनता रहूं। बोले आपकी कथा इतनी मदमस्त है, इतनी मतवाला कर देती है, आपकी कथा में एक नशा है प्रभु, नशा है। संसार में भी कुछ नशा होता है, शराब का नशा है ना। बोले शराब का नशा, लोग शराब का नशा क्यों करते हैं? क्योंकि जगत में लोग दुखी हैं, बहुत दुख, सभी ओर से दुख आते हैं, शराब पी लेते हैं, नशा हो जाता है, दुख भूल जाते हैं है? फिर उसे नशे में व्यक्ति को लगता है मैं ही मुंबई का राजा हूं है? पड़ा है गटर के बाजू में, लेकिन शराब पीने से दुख भूल जाता है व्यक्ति, लेकिन कितने घंटों तक? 2, 5, 10। और मरने के बाद शराब पी रहा है तो नरक में जाएगा। लोग शराब पीते हैं, नशा करते हैं 2-5 घंटे तक दुख भुलाने के लिए। भगवत कथा सुन लीजिए, जीवन भर नशा चढ़ जाएगा, जीवन भर दुख का एहसास नहीं होगा। कहां दुख है, कौन दुखी है? यदि भगवत कथा में बैठे हो दुख नहीं है। दुख है, दुख आएंगे परंतु स्पर्श नहीं कर पाएंगे। जैसे जैसे बारिश की ऋतु है और दो लोग घर से निकले हैं, एक के पास छाता है, एक के पास छाता नहीं है, दोनों के लिए बारिश है, संसार में दुख है, बारिश दोनों के लिए, परंतु जिसके पास छाता है उसे बारिश स्पर्श नहीं हो पाएगी। कृष्ण कथा रूपी जिसके पास छाता आ गया ना भक्तों, संसार का दुख उसे स्पर्श नहीं कर पाएगा। संतों का मिलन, संतों का संग, भगवत कथा। तो इस प्रकार लंकिनी मरते मरते कह कर गई कि संतों के संग में जो सुख है अन्य और कहीं। भगवान ने कम से कम मरते मरते तो मुझे ये सुख दे दिया, लंकिनी के हृदय में यह आनंद हुआ। आगे गोस्वामी जी कथा को बढ़ाते हुए कहते हैं, प्रवीसी नगर कीजे सब काजा। लंकिनी ने अंत में क्या कहा कि देखो मैं जानती हूं लंका में कितने पहरे, कितने सिक्योरिटी गार्ड और क्या क्या है। प्रवीसी नगर कीजे सब काजा, नगर में जाकर आप अपना सारा कार्य करना, आपका यहां पर आना और अपना कार्य करना बिल्कुल इम्पॉसिबल, इतनी टाइट सिक्योरिटी रावण ने लगाकर रखी है, कुछ हो ही नहीं सकता है। लेकिन मेरे हृदय में भरोसा है, हृदय राखी कौशलपुर राजा, कौशलपुर के राजा को, अयोध्या के राजा राम को यदि आप हृदय में स्मरण करते हुए चलोगे, रावण तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। क्यों? ये देवी ने मरते मरते बहुत सुंदर उपदेश दिया। हनुमान जी ने कहा क्यों? बोले गरल सुधारिपु कर ही मिटाई। बोले जिसके ऊपर भगवान राम की कृपा हो जाती है उसके लिए विष भी अमृत हो जाता है, मृत्यु भी अमृत हो जाती है, वह अमर हो जाता है जिसके ऊपर राम की कृपा हो। गरल सुधा, गरल माने विष, गर विष, और सुधा माने अमृत, विष भी अमृत। इतिहास अनेक प्रसंग है। राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। गरल सुधा, यदि विष भी अमृत हो जाता है। आपने प्रहलाद महाराज, विष्णु पुराण में वर्णन है, हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को मारने के लिए भोजन में विष डाल दिया। प्रहलाद महाराज ने ग्रहण किया, विष कुछ नहीं बिगाड़ पाया। क्यों? भगवान के भक्त थे। और यदि भगवान की भक्ति नहीं करते हो, आप अमृत भी पियोगे तो वो विष हो जाएगा। राहु ने पिया था, अमृत पिया था राहु ने, लेकिन मरना पड़ा। तो इस प्रकार गरल सुधारिपु करई मिटाई, गोपद सिंधु अनल सित लाई। ये सिंधु जो है, ये संसार जो है सागर के समान है, परंतु राम की कृपा जिस पर हो गई ना, वह सागर एक छोटा सा खड्डा बन जाता है, भक्त उसे आसानी से पार कर लेता है। हनुमान जी महाराज आप जा रहे हो अंदर कौशलपुर राज, राम को अपने हृदय में स्मरण करते हुए चलना। यदि राम हृदय में है, गरुड़ सुमेरु रेन समताही। ये जो सुमेरु पर्वत है, राम की कृपा से एक एक मिट्टी का दाना हो जाएगा। राम की कृपा से, राम कृपा करी चितवा जाहि, यदि राम की कृपा। इस प्रकार कहकर लंकिनी ने अपना प्राण त्यागा और हनुमान जी महाराज अति लघु रूप लेकर, अति लघु रूप धरे हनुमाना, बैठा नगर सुमेरी भगवाना, उस लंका नगरी में प्रवेश किया। मंदिर मंदिर प्रति करी सोधा, देखे जहां तह अगणित जोधा। यहां मंदिर का अर्थ आप लोग मंदिर मत समझना, हमारा हम जो मंदिर समझते हैं, अच्छी भाषा में, अवधी भाषा में या संस्कृत में घर को मंदिर कहा जाता है। अब रावण के लंका में मंदिर कहां से होगा? भारत में रावण के लंका में मंदिर, यहां मंदिर का अर्थ है घर। घर घर प्रतीक करी सोधा, घर घर में जाकर हनुमान जी महाराज ने देखा, देखे जहां तक अगणित जोधा। अनेक जगह पर घर घर में जाकर देखा, फिर अंत में रावण के घर पर गए। गय दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाई। रावण के घर पर गया तो अति विचित्र, बहुत बहुत इस पर विचार किया जाए, हनुमान जी ने विचित्र क्या देखा होगा है? रावण के घर पर विचित्र ये देखा होगा कि ये 10 मस्तक वाला रावण कैसे सो रहा है, वो करवट कैसे बदलता होगा। रावण के 10 मस्तक और करवट जब बदलनी होगी तो जैसे एंटीना गिर जाता है ना, ऐसा लगता होगा। और विचित्र हनुमान जी ने सोचा इसका सिरदर्द होता होगा तब क्या करता होगा, मंदोदरी तीसरे नंबर वाला दबाना, तीसरा नहीं सातवें में थोड़ा आज ज्यादा दर्द है। अति विचित्र रावण के अनेक विचित्रता देखी, लेकिन बहुत विचार किया जाए वो था भी फैसिलिटी वाला आदमी, उसने पलंग ही ऐसा खांचा वाला बनाया होगा, दसों खांचे में वो अपने मस्तक आराम से रह जाए। बहुत बहुत विचार करने पर ये मंतव्य मिलता है। शयन किए देखा कपिते ही, मंदिर महु न दिखी वैदेही। रावण को सोते हुए देखा, परंतु वैदेही विदेह राज की कन्या को, सीता को हनुमान जी ने कहीं नहीं दिया। हनुमान जी रावण के घर से बाहर निकले, तब तक रात के 3 बजे थे, 3:30 बजे थे। ये रात की बात है, रावण सो रहा, आपने देखा ना, सो रहा था। हनुमान जी महाराज जब बाहर निकले,
भवन एक पुनी दीख सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा।
हनुमान जी महाराज रावण के घर से बाहर निकले तो उन्होंने एक अद्भुत घर देखा, थोड़े ऊपर हेलीकॉप्टर के जैसे ऊपर चले गए और ऊपर से देखा तो रावण की लंका में एक ऐसा घर था जिसकी विशेषता क्या थी। बोले भवन एक पुनी दीख सुहावा, हनुमान जी महाराज ने रावण के उस लंका में अनेक घर को देखा लेकिन घर अच्छे नहीं लगे। हीरो के फोटे, हीरोइन के फोटे फोटो थे, हैं क्रिकेटर के फोटो थे, अनक अनक अलग अलग, लेकिन एक घर उस रावण की लंका में हनुमान जी ने जब एक घर को देखा तो सुहावा, हनुमान जी को बहुत सुकून मिला, देखकर घर को देखकर सुकून मिला, मतलब बहुत अच्छा लगा। बोले उस घर में ऐसा क्या था जिसे हनुमान जी को बहुत अच्छा लगा। गोस्वामी जी कहते हैं, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। उस घर में जो हरि का मंदिर था वो अलग से बनाया था। क्या था, ठीक से समझ में आ रहा है ना, भगवान का मंदिर सबके घर में होता है ना, तो भगवान का मंदिर एक कमरे में अलग से बना हुआ था और हनुमान जी महाराज को बहुत अच्छा लगा। और हमारे घर पर भगवान के हरि के मंदिर को, बेडरूम को बहुत अच्छा सजाते हैं, ड्राइंग रूम को बहुत अच्छा, हॉल को अच्छा, किचन को अच्छा, और भगवान का मंदिर कहीं कोने में छोटा सा रख देते हैं, डिस्टर्ब ना हो, नड़े नहीं बेचारे। हरि मंदिर भिन्न बनावा, भगवान के मंदिर को अलग से बनाना चाहिए। जैसे हमारे लिए रहने के लिए अलग कपड़े, अलग कबाड़, अलग पलंग, तो क्या भगवान के लिए सब अलग नहीं होना चाहिए, अलग कमरा नहीं होना चाहिए। यद्यपि सब कुछ भगवान का है और हम लोग भगवान को ज्यादातर किचन में रख देते हैं और रसोई का तड़का वगार धुआं खाते रहते हैं बेचारे भगवान भी, और कहेंगे प्रभु घर पर आइए, क्या आएंगे घर पर। कभी कभी ऐसा तड़का लगता है कि आदमी भी खड़ा नहीं रहता है और भगवान बैठे रहते हैं, लाओ तड़का है? यह देखकर भगवान और भक्त प्रसन्न नहीं होते हैं। हरि मंदिर, भगवान का मंदिर अलग से बनाना चाहिए, अलग से होना चाहिए, भगवान के लिए सब कुछ अलग। हमारे श्री प्रभुपाद जी ने इस्कॉन मंदिर बनाए तो इस्कॉन में ये एक विशेषता आप देखोगे, भगवान के लिए सब कुछ अलग। नहीं तो आप सोचोगे भगवान के लिए एयर कंडीशन भी होता है, कुछ लोग कहेंगे पत्थर को, बोले वो पत्थर नहीं भगवान है, स्पेशल, सबसे अच्छी अच्छी वस्तु भगवान को देनी चाहिए, उत्तमानी वस्त्राणि, अच्छी वस्तु हमें जब हम अच्छी वस्तु भगवान को देंगे तो भगवान हमें भी अच्छी वस्तु देंगे। हम लोग थर्ड क्लास का माल, रिजेक्शन, ये फटी हुई नोट है, कोई बात नहीं मंदिर में डाल देंगे, फटा हुआ नोट मंदिर में डालते हैं, सेलो टेप लगाया हुआ नोट मंदिर में होता है, जो कहीं नहीं चलता है वो मंदिर में डालते हैं। और फिर कहते हैं हमने बहुत दान दिया है, आज बहुत पेटी में डाला। तो इस प्रकार हरि का मंदिर अलग से, इसे भगवान प्रसन्न होते हैं। और क्या देखा हनुमान जी महाराज, और ऊपर से थोड़े नजदीक गए उस घर के पास, राम युद्ध अंकित गृह शोभा भरनी न जाए। उसमें भगवान राम के कुछ चिन्ह थे और हनुमान जी तब तो बहुत प्रसन्न हो गए जब उस घर के प्रांगण में तुलसी जी का दर्शन किया। तुलसी का नव तुलसी का बृंद तं देखी हर्ष कपि राय। सभी वानरों के राजा हनुमान जी महाराज तुलसी देवी के पौधे को देखकर हर्षित हो गए, प्रसन्न हो गए। हनुमान जी ने मन में सोच लिया निश्चित कोई वैष्णव है, क्योंकि वैष्णवों के घर पर, भगवान के भक्तों के घर में तुलसी होती है। तुलसी जो है भगवान को प्रिय है। तुलसी की सेवा करना, तुलसी की सेवा करने से हमें भगवान की भक्ति मिलती है। क्यों? क्योंकि भगवान ने अपनी सेवा करने के लिए तुलसी को चुना है और अपनी सेवा देने के लिए तुलसी को यह डिपार्टमेंट दिया है। मोर यही अभिलाष विलास कुंजे दियो वास, नयने हेरी बुसदा युगल रूप राशि, सेवा अधिकार दियो। तुलसी देवी को प्रार्थना करते समय क्या कहते हैं कि हे देवी तुलसी, हे माँ, आप सेवा करने का अधिकार दीजिए। ये तुलसी के हाथ में, तुलसी की सेवा। और बिना तुलसी का घर शमशान माना जाता है, मुर्दे रहते हैं वहां। तुलसी होनी चाहिए, हरि को प्रिय है। हनुमान जी महाराज सोच रहे हैं लंका,
लंका निशीचर निकर निवासा, इहां कहां सजन करवासा।
हनुमान जी महाराज सोच रहे हैं ये लंका तो निशाचर की नगरी है, लंका तो असुरों की नगरी है, यहां सज्जन कौन हो सकता है। तुलसी और मंदिर को देखकर हनुमान जी महाराज कंफ्यूज हो गए कि यहां कौन सज्जन, ये तो लंका नगरी है, यहां तो सब असुर हैं। और असुरों को हनुमान जी महाराज ने क्या कहा, लंका निशाचर, असुरों को निशाचर कहा जाता है। क्यों जानते हैं? चर का अर्थ होता है विचरण करना और निशा का अर्थ होता है रात। जो रात को विचरण करते हैं उसे असुर कहा जाता है। साधु जो होते हैं वे ब्रह्म मुहूर्त में विचरण करते हैं मंदिरों में इत्यादि, और असुर जो होते हैं वे रात को विचरण करते हैं बीयर बार में या थिएटरों में मूवी देखने के लिए। रात को जो दिखाई देते हैं वो असुर है। रात भगवान ने सोने के लिए बनाई है। आज तो मुंबई में रात को दिन शुरू होता है, गीत भी गाते हैं रात को 12 बजे दिन निकलता है। हाँ, रात को 12 बजे दिन निकलता है, किसका? निशाचरों का, असुरों का। अस्त में रात सोने के लिए है और ब्रह्म मुहूर्त जगने के लिए है। भगवान ने, प्रकृति ने जो नियम बनाया है उस नियम में रहना चाहिए। मन महु तरक करे कपि लागा, तेही समय विभीषण जागा। वह घर और किसी का नहीं, वह घर विभीषण का था। विभीषण जो रावण का छोटा भाई था, यद्यपि रावण का भाई परंतु भगवान का परम भक्त था विभीषण। क्योंकि 3:30-4 बजे थे, ब्रह्म मुहूर्त का समय था और उसी समय विभीषण जी जगे। गोस्वामी जी ने लिखा तेही समय विभीषण जागा। तो मानो प्रश्न उठाया जाए कि विभीषण ने जगकर क्या किया होगा, चित्रहार टीवी शुरू कर दिया होगा। आज कुछ लोग सुबह जगकर टीवी शुरू करते हैं या टेप शुरू करते हैं या अखबार हाथ में लेते हैं। कलयुग का वेद है, दुनिया का कचरा है। सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जाकर अखबार, आज 4 लोगों का अपहरण हो गया, आज आतंकवादियों ने इतनों को मार डाला, आज इनका बलात्कार हो गया, आज पुलिसों ने इतने लोगों को पकड़ा। ब्रह्म मुहूर्त में ये पढ़ते हैं और अपने आप को सोफिस्टिकेटेड मानते हैं। वास्तव में ये दुनिया का कचरा है। खैर दूसरी बात है।